नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। गुजरात की एक श्रम अदालत ने गुजरात फैक्ट्री नियम 1963 का उल्लंघन करने पर हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के एक कारखाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया है। हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड बिजली प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक कंपनी हिताची एनर्जी की भारतीय इकाई है। हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, श्रम न्यायालय और JFFC गोधरा ने पंचमहल जिले में स्थित हमारे कारखाने पर गुजरात फैक्ट्री नियम 1963 के नियम 12C(4)(e) के उल्लंघन के कारण ₹5,000 का जुर्माना लगाया है। गुजराती भाषा में ये आदेश बुधवार को मिला, जबकि अंग्रेजी में इसका अनुवाद बृहस्पतिवार को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों ने चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक अपनी कुल खरीद का 34.63% सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों से खरीदा है। केंद्रीय उपक्रमों को अपनी कुल खरीद का 25% MSME में खरीदना होता है। उन्होंने वित्त मंत्रालय से संबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन पर परामर्श समिति की बैठक के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है, बैठक में सरकारी खरीद मंच के जरिए केंद्रीय लोक उपक्रमों की खरीद में आए उल्लेखनीय उछाल का जिक्र हुआ। केंद्रीय उपक्रमों ने 2020-21 में GEM के जरिए 7,035 करोड़ रुपए की खरीद की थी। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक यह आंकड़ा 1,33,720 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने झारखंड में छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के ऑडिट में करोड़ों रुपए की भारी अनियमितताएं और अवैध हस्तांतरण का पता लगाया है। विधानसभा में बृहस्पतिवार को पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट के दौरान फर्जी लाभार्थियों को 1.17 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का गलत तरीके से वितरण, मृत व्यक्तियों को पेंशन और पुरुष लाभार्थियों को विधवा पेंशन प्रदान करने के मामले सामने आए। महालेखाकार अनु फ्रांसिस डुंगडुंग ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा, सामाजिक सुरक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं में DBT के महत्व को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2021 और मई 2022 के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रदर्शन ऑडिट किया गया। ये ऑडिट 2017 और 2021 की अवधि के लिए था। ऑडिट में भारी वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने 2 करोड़ स्मार्ट मीटर को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ने के लिए इंटेल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस परियोजना का क्रियान्वयन अगले 10 साल में पूरा होने का अनुमान है। एयरटेल ने बयान में कहा, ये क्लाउड और एनालिटिक्स के साथ साथ हेड एंड सिस्टम जैसे स्मार्ट मीटरिंग अनुप्रयोगों में एयरटेल के प्रवेश का प्रतीक है। ये देश में स्मार्ट मीटरिंग क्षेत्र में सबसे बड़े सौदों में से एक है और ये सभी क्षेत्रों में एयरटेल की तेजी से बढ़ती IoT तैनाती में महत्वपूर्ण योगदान देगा। एयरटेल बिजनेस इंडिया के मुख्य CEO गणेश लक्ष्मी नारायणन ने कहा, IoT एयरटेल बिजनेस के लिए सबसे तेजी से बढ़ता कारोबारी खंड है। अब हम रणनीतिक रूप से सरकार के 25 करोड़ परंपरागत मीटर को डिजिटल करने के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। डेनिम ब्रांड मुफ्ती का स्वामित्व रखने वाली कंपनी क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग के IPO को निर्गम के तीसरे और अंतिम दिन बृहस्पतिवार को 51.85 गुना अभिदान मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 549.77 करोड़ रुपए के IPO के तहत की गई 1,37,44,472 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 71,26,92,325 शेयरों के लिए बोलियां लगाई गईं। निर्गम के तहत खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के खंड को 19.94 गुना अभिदान मिला, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों के खंड को 55.51 गुना बोलियां मिली। उच्च मुद्रास्फीति पर काबू पाने के कोशिशों के तहत तुर्की के केंद्रीय बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में बृहस्पतिवार को 2.5% की एक और बढ़ोतरी कर दी। तुर्की केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को नीचे लाने के लिए अपनी नीतिगत दर में लगातार 7वीं बढ़ोतरी की। इसके साथ ही नीतिगत ब्याज दर 42.5% पर पहुंच गई है। मुद्रास्फीति पिछले महीने 61.98% के अत्यधिक उच्च स्तर पर रही थी। महंगाई के इस ऊंचे स्तर पर पहुंचने से आम लोगों के लिए जरूरी चीजों की खरीदारी और किराया दे पाना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने ऐसे संकेत दिए कि जल्द ही वो ब्याज दर में वृद्धि के सिलसिले पर रोक लगा सकता है। ओमान के साथ FTA से परिधान निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने बृहस्पतिवार को यह बात कही है। एईपीसी ने कहा है कि भारतीय निर्यातकों के पास एक खाड़ी देश में व्यापार के बड़े अवसर हैं। इस समझौते के लिए बातचीत, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कहा जाता है, तेज गति से आगे बढ़ रही है। एईपीसी ने कहा कि सीईपीए की ओर तेज प्रगति उत्साहजनक है और ये भारत ओमान द्विपक्षीय व्यापार के लिए बदलाव वाला साबित होगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।